ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने पवित्रता के लिए रिमाइंडर दिया और साथ साथ बताया कि बाबा के दो प्रकार के बच्चे हैं। कौन से? एक है मातेले और एक है सौतेले। तो जो मातेले बच्चे हैं वो क्या करते हैं? पवित्रता को फॉलो करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। उन्हें निश्चय होता है कि हमें स्वर्ग का वर्षा मिलने वाला है। और जो सौतेले होते हैं वो मन मत पर चलते हैं, कभी निश्चय तो कभी संशय करते रहते हैं, प्रतिज्ञा को तोड़ते रहते हैं। तो ये जो सौतेले और मातेले की बात आई, तो शास्त्रों में दैत्यों को और दानवों को क्या बताया गया है? सौतेले भाई बताया गया है। ये सौतेले भाई है ना, क्योंकि पिता इनका एक है लेकिन माँ इनकी अलग अलग है। है एक ही बाप के बेटे लेकिन माँ दोनों की अलग है, इसलिए ये दोनों क्या है? सौतेले भाई है। और चंदली सौतेले भाइयों में ऐसा होता है, कभी बनती नहीं है, परंतु फिर भी बनाए बिगर जीवन नहीं चल सकता है। अगर जीवन में चलना है तो ऐसी ही कहानी सागर मंथन की है। तो हम पहले उसको समझेंगे और उसका आध्यात्मिक भाव, विचार सागर मंथन क्या है उसको समझेंगे। तो सागर मंथन की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये कहानी किस लिए है? सागर मंथन की कहानी हम आत्माओं की कहानी है कि जब हम परमधाम से नीचे उतरते हैं तो देवताओं का राज्य होता है। दो युगों तक दैवी वृत्तियों के आधार से इस संसार में जीवन चलता है, लेकिन दो युगों के बाद जो हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस है जीरो पे चली जाती है और बॉडी कॉन्शियसनेस शुरू हो जाता है, मतलब अहंकार आ जाता है और वहां से दैत्य प्रवृत्ति कहे, दानवी प्रवृत्ति कहे, आसुरी प्रवृत्ति कहे, रावण वाली प्रवृत्ति कहे, मायावी प्रवृत्ति कहे, उनका जन्म शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे फिर इन दोनों के बीच में फाइटिंग होती रहती है, लेकिन ये फाइटिंग में चलती है फिर रुक जाती है, फिर चलती है फिर रुक जाती है। पर होता क्या है, अंततः चलते 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 धीरे धीरे क्या होता है, असुरों की शक्ति बढ़ती जाती है, देवियों वृत्ति की कम होती जाती है और एक दिन आता है दानवों का देवताओं पर राज्य। देवताएं अधीन हो जाते हैं। तो ऐसी ही स्थिति जब बनी तो शुरुआत होती है कि वो बॉडी कॉन्शियसनेस भी कैसे आया, तो कहा कि स्वर्ग से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, मिल गए रास्ते में इंद्र। और चूंकि स्वर्ग से विष्णु की पूजा करके आ रहे थे तो हाथ में पारिजात पुष्पों की माला थी तो इंद्र को दी, लेकिन इंद्र ने क्या किया, वो पारिजात पुष्पों की माला की कदर नहीं की और हाथी को दे दिया। ऐरावत हाथी पे होता है ना वो, और हाथी ने भी क्या किया, उसकी जो महक होती है ना पारिजात पुष्पों की, वो इतनी तेज थी कि वो भी नहीं सहन कर पाया, उसने भी उसको नीचे गिरा दिया और पांव तले कुचल दिया। और ऋषि दुर्वासा को पता चला कि इंद्र मद में आ गया है, अहंकार में आ गया है, पारिजात पुष्प जो विष्णु को प्रिय है उसकी पूजा करके, ये प्रसादी के रूप में मैंने उसके साथ शेयर किया है, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं की है और गुस्से में आकर उसे श्राप दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा। और श्रीहीन माना ही वैभवों से वंचित, भाग्य से वंचित हो जा। और उस श्राप के कारण जो कहा कि इन दोनों की लड़ाई चलती रही फिर, लेकिन एक दिन क्योंकि श्राप मिला हुआ था ना, तो धीरे धीरे इनकी देवी वृत्ति, इंद्रमाना देवता और उनके साथ जो भी होंगे उनके ही गण, उनकी टीम कमजोर, क्योंकि इधर राजा बलि को दैत्य को पता चल गया था कि देवों के राजा इंद्र को श्राप मिल गया है, तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने कह दिया अब मौका है उनको हराने का, क्योंकि वो श्राप से ग्रसित है। अब हम चाहे उनके ऊपर कितना भी आक्रमण करें, वो हम पर कभी भी विजयी नहीं हो सकते हैं, और इसलिए इन दोनों की फाइटिंग होती रही और अंत में एक दिन आया कि पूरे ही अधीन हो गए देवता। है ना हमारी कहानी, दो युगों तक हमने खूब, क्योंकि स्वर्ग के राजा इंद्र कह रहे हैं ना, स्वर्ग के राजा मतलब क्या, वैसे तो देखा जाए बाबा कहते हैं कि वैकुंठ के स्वर्ग के राजा कौन है, पर इंद्र राजा किस इस भाव से कहा गया है, किस भाव से कहा गया है, इंद्रियों का राजा मन है, और वहां पर उस मन को इंद्रियों के द्वारा सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ प्राप्ति है ना, बाबा ने कहा ना हर प्रकार के सुख है वहां पे, तो वो जो सुख भोगे थे, लेकिन कहा ना नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस थी, फिर दो युगों के बाद क्या हुआ, कॉन्शियसनेस जीरो पे चली हुई तो बॉडी कॉन्शियसनेस आया, और इसलिए देवताएं वहां पे जब रहते थे आपस में तो कैसे रहते थे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट सम्मान, लेकिन अब क्या कर दिया उसने, दुर्वासा ऋषि के द्वारा दी गई माला का डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो आउट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस ही होता है ना ये सब। तो वो जो बाबा ने हमको पहले ही कहा है ना कि दो युगों के बाद क्या होने वाला है, रावण तुम पे अटैक करने वाला है, अर्थात दानव हम पे अटैक करने वाले हैं, और वो झेलते झेलते हम आ गए कलयुग के एंड तक कि हमारी दैवी प्रवृत्तियां नीचे दब गई और आसुरी प्रवृत्तियां ही हमारे ऊपर अपना बोलबाला जमाए हुए। तभी तो हम कहते हैं, हाँ दुनिया वाले भी कहते पता है कि मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, पता है और ना हम चाहते हैं, लेकिन हमसे वो हो जाता है। दुर्योधन को जब कहा गया कि तुम गलत कह रहे हो, कहते मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है धर्म क्या होता है, मुझे ये भी पता है अधर्म क्या होता है, परंतु पता होने के बावजूद भी मैं अपने आप को धर्म की ओर जोड़ नहीं पाता हूँ, और पता होते हुए भी मैं अपने आप को अधर्म से अलग नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस एक्सट्रीम पर पहुंच गया है। हमारी कहानी, हम सभी भी यही कहते हैं ना, मालूम है कि मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना चाहिए, फिर भी हम देते ही रहते हैं। लेकिन फिर जब एक्सट्रीम हो जाता है तो जीना दूभर हो जाता है ना, फिर कहीं तो रिक्वेस्ट लेके जानी पड़ती है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, वो गए विष्णु जी के पास कि ऐसी ऐसी बात है। विष्णु जी ने कहा, अगर इससे उबरना चाहते हो तो तुम्हें ना दानवों के साथ मित्रता करनी पड़ेगी। उन्होंने पहले तो कह दिया कि इसके लिए तुम्हें अमृत पीना पड़ेगा, क्योंकि वो जो श्राप मिला था कि तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी को वेल्थ भी कहते हैं ना, तो कहा कि वो तुम्हारा आज भी मौजूद है, नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो सागर के तले में चला गया है और वो सागर के तले में से वापस आप तक आए, इसलिए आपको सागर का मंथन करना पड़ेगा। तो देवता कहते हैं उनसे कि लेकिन इतने बड़े सागर का मंथन हम अकेले कैसे कर सकते हैं। तो मुस्कुराए विष्णु जी, कहते हाँ बात तो सही है, अकेले करना तो पॉसिबल नहीं है, तो तुम है ना सहायता ले लो। कहा किसकी सहायता ले, तो कहा दैत्यों की सहायता। तो कहा वो तो हमारे शत्रु है, और शत्रु से सहायता और हम क्यों जाकर मांगे। तो कहा कि नहीं, अगर आपको आपका सौभाग्य, आपका वैभव, आपका श्री, आपकी लक्ष्मी आपको वापस चाहिए, आपको मंथन करना ही होगा, और वो अकेले के बस की बात नहीं है, आपके पास कोई और चारा नहीं है। और कहा देखा, देखो जब परिस्थितियां आती है ना तो गधे को भी बाप बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है ना, हम भी रियल लाइफ में करते हैं ऐसे नहीं करते। कहा देखो परिस्थितियां जब आती है तो गधे को भी बाप बोलना ही पड़ता है, और इसलिए तुम्हें उनके साथ बहसबाजी नहीं करनी होगी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा, उनके पास शांति प्रस्ताव लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन उनको बात फिर भी समझ में नहीं आ रही थी कि ये कैसा हो सकता है कि शत्रु के साथ मित्रता, और वो भी अपने वैभव को प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने फिर विष्णु ने देखा कि इनको अभी भी बात क्लियर नहीं हो रही है, तो उन्होंने सर्प और मूषक का न्याय सुनाया। ये कहा एक सपेरे ने एक पिटारी में सांप को कई दिनों से बंद करके रखा हुआ था, और किसी दिन थोड़ी सी वो पिटारी थोड़ी खुल गई होगी, आके चूहा भी उसमें कूद पड़ा और वापस टकन लग गया। अब दोनों क्या है, एक दूसरे के बैरी हैं। लेकिन अब सांप ने उसको देखा तो जी तो किया कि इसको खा लूं, लेकिन अगर खा लूं लेकिन फिर भी इसके अंदर ही पड़े पड़े तो मर ही जाऊंगा ना, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं। भूखा तो था ना कई दिनों से, पर मैं अगर यहां इस समय भूख तृप्त कर भी लूं पर फिर भी इसी के अंदर रह रहे के मरना ही पड़ेगा। तो उससे दोस्ती करता है, कहता है मामा जी, चूहे को मामा जी बोलता है, मामा जी देखो ये जो सपेरा है ना बड़ा ही दुष्ट है, इसने कई दिनों से मुझे बंद करके रखा है, मुझे खाने के लिए भी नहीं दिया है, और देखो अब आप भी इसके अंदर आ गए हैं, तो हम दोनों ना एक युक्ति करते हैं, दोनों की जान बच जाएगी। फिर आपको देखो नुकीले कांट मिले, दांत मिले हुए हैं, आपके पास कुतरने की आर्ट है, तो आप इस पिटारी को कुतर डालो तो फिर उस हिस्से से हम निकल पड़ेंगे। चूहा कहता है तुम मेरे शत्रु हो, और अगर मैं रास्ता बना के भी दूं तो तुम निकलने के बाद भी तो मुझे खा लोगे, ये तो सिर्फ आप इसमें विन करोगे, मैं थोड़ी विन करूंगा। कहते नहीं नहीं आजकल आपको पता नहीं, मैंने तो चूहों को खाने का व्रत ले लिया है। हाँ, और उसका प्रूफ अभी आपके सामने है, नहीं तो मैं तो कब का आपको खा लिया होता। चूहे को बात समझ में आ गई कि सचमुच, नहीं तो ये तो मुझे कब का खा लिया होता, तो सचमुच इसने व्रत लिया है तो ये अब ऐसा नहीं करेगा, तो चलो मैं अपनी आठ यूज करता हूँ। और उसने कुतर कुतर के मस्त रास्ता तय कर दिया। चूंकि उसने उसको मामा जी बोला था तो इसने कहा भांजे रास्ता रेडी है, निकल पड़ो। कहा शाबाश मामा जी, ऐसे बोल के वो निकला और निकल के बाहर कुंडली मार के बैठ गया और आवाज देता है मामा जी आप भी आ जाइए बाहर। और मामा जी मतलब चूहा जैसे ही बाहर आया ये उसको झपटा। वो कहते अभी अभी तो आपने मुझे बताया था व्रत लिया हुआ है, आप मेरे भांजे हो, मामा जी पे ऐसे प्रहार कर रहे हो। का वो रिश्तेदारी ना सिर्फ पिटारी के अंदर थी, अब तो हम कहाँ है, बाहर है और खा लिया। और ये एग्जाम्पल देके विष्णु जी ने कहा ऐसी रिश्तेदारी आप दानवों के साथ कर लो। बात समझ में आ गई, तैयार हो गए दानवों के पास, शांति प्रस्ताव लेकर गए कि देखो हम दोनों परेशान हैं, क्यों नहीं हम आपस में मित्रता कर लेते हैं, क्योंकि देखो भले उन्होंने अपना राज्य बिछाया लेकिन हमेशा डर तो बना रहता है कि कहीं वापस फिर से न लिया जाए, तो जीना तो दूभर है ना। तो कहा क्यों नहीं हम मित्रता कर लेते हैं और हम दोनों मिलके ना सागर का मंथन कर लेते हैं और मंथन से ना अमृत निकलेगा और फिर हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे तो हम दोनों अमर हो जाएंगे, दोनों भी निर्भय जीवन जिएंगे। अभी तो दोनों डर डर में रहते हैं ना। बात उनको भी समझ में आ गई और तैयार हो गए। तो विष्णु जी ने पहले ही बता रखा था कि इसके लिए सागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को क्या करना, मथानी बनाना, और वासु की नाक को क्या करना, रस्सी बनाना, जिससे कि मथानी को आप ऐसे चला सको। तो वो भी बात उनसे कह दी तो कहा ठीक है चलते हैं मंदराचल पर्वत को लेके। अभी सागर में मंदराचल पर्वत को जमीन से उखाड़ा और दोनों उनको ले जा ही रहे थे कि बहुत हेवी होने के कारण वो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं ले जा पाए। तो देवताओं ने विष्णु को याद किया क्योंकि उन्होंने ही तो राय दी थी ऐसी। तो विष्णु जी उनकी प्रेयर सुन के वहां आ गए और गरुड़ पर सवार थे, मंदराचल को भी गरुड़ पे रखा और समुन्दर के बीचों बीच जाके उस मंदराचल पर्वत को इंस्टॉल कर दिया, स्थापित कर दिया। अब स्थापित करने के बाद प्रश्न आया, फिर ये वासुकी के पास भी गए, नाग के पास। वासुकी नाग कहता है लेकिन मेरा इसमें क्या हित होगा, का तुमको भी अमृत देंगे हम तो ठीक है, विन विन पोजीशन है तो सब कोई तैयार हो जाता है ना। का ठीक है फिर अगर मुझे भी अमृत का शेयर मिलेगा तो मैं चलता हूँ। और चले और रस्सी बनाई, उसको मंदराचल पर्वत पर लपेटा। अब बात आई कि कौन किस साइड खड़ा रहे, क्योंकि सर्प है वो नाग है ना, वासुकी नाग है तो उसकी एक है, एक तरफ है पूंछ और दूसरे तरफ है मुख। तो देवताएं जाके पूंछ की तरफ खड़े हो गए, पहले तो मुख की तरफ खड़े हो गए क्योंकि उनको पता है दैत्यों की क्या प्रवृत्ति होती है, अपोजिट होती है, तो इसलिए वहां खड़े हो गए। कहा हम इस साइड खड़े रहेंगे, आप लोग पूंछ वाले। कहा नहीं नहीं, पूंछ को हमेशा अशुभ माना जाता है, आपने हमको क्या समझ के रखा है। हाँ, तो कहा भले ठीक, आप जैसे कहो हम उसमें राजी हैं। तो दानवों ने अपने ही हाथों से कौन सा हिस्सा मांग लिया, मुंह वाला हिस्सा मांग लिया, और दोनों लगे मथानी चलाने। और जैसे ही मथानी चले, क्योंकि दोनों स्ट्रांग तो जरूर थे लेकिन पर्वत बहुत भारी था उनके भेंट में, तो पर्वत क्या हो रही, मतलब मथानी क्या हो रही है, लुढ़क रही है, कभी इधर तो कभी इधर। और लुढ़कती है तो उस समय मथना इट इज नॉट अ इजी टास्क, डिफिकल्ट हो जाता है। और भी फिर भगवान विष्णु को याद किया, और फिर भगवान विष्णु आए और कहा कुर्म अवतार लेके मंदराचल पर्वत के नीचे जाके उसको आधार दिया। अब वो हिलना डिलना उसका बंद हो गया। तो एक चैलेंज आया तो उसको क्रॉस, पहले चैलेंज आया था कौन किस साइड खड़ा रहेगा, पहले शांति प्रस्ताव लेके गए, समझाया, बात बन गई। फिर चैलेंज आया कौन किस साइड खड़े रहेंगे, फिर चैलेंज आया कि हिल रहा है, तो वहां पे फिर कुर्मा अवतार में विष्णु जी आके विराजमान हो गए। वो चैलेंज पूरा हुआ नहीं, मथानी फिर चल रही है वो रस्सी की मदद से। फिर एक चैलेंज आया कि वो जो वासुकी नाग है, क्योंकि जब वो ऐसे ऐसे घूम रहा, उसके पेट में जो पड़ा होगा वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो उसके मुख से, क्योंकि विष तो भरा है, अब कौन किस साइड खड़े थे, दैत्य खड़े थे मुख के साइड, और उनके ऊपर उससे मुख से निकलने वाला वो जहरीला धुआं उनसे सहा नहीं जा रहा, और वो तो काफी दूर थे, तो वो आनंद में थे और ये परेशान थे। तब उनको दिमाग ठिकाने पे आया, अरे ये तो हमने अपने ही हाथों अपने लिए मोल लिया है ना, क्योंकि पहले तो देवताओं ने कहा था ना हम रहेंगे उस साइड, तो उनको अपनी गलती महसूस हुई कि हमने क्या गलत काम कर लिया। कोई बात नहीं, गलत काम कर तो लिया, लेकिन फिर भी जैसे बांस होती है, कुछ दुर्गंध होती है, हमसे सही नहीं जाती है, तो हम नाक को रोकते रहते, मतलब श्वास का अवरोध कर देते। लेकिन कितनी देर तक करोगे, बहुत ज्यादा देर तक करोगे तो गिर पड़ोगे ना, तो उनका भी हाल वही होने लगा। और धीरे धीरे उसका सांप से निकलने वाला जो विष है ज्यादा अमाउंट में हो गया, तो पूरा ही सरफेस विष से भर गया, कि अब न सिर्फ दैत्य परेशान हो रहे हैं लेकिन सब कोई परेशान होने लगे। तब जाके फिर विष्णु को स्मरण किया, उसने कहा नहीं, आपको शिव जी के पास जाना पड़ेगा। शिव जी के पास गए और शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, उसने अंजलि में लिया और पी लिया, तो इस चैलेंज से भी मुक्ति मिल गई और फिर से मंथन का कार्य चालू किया एक नई एनर्जी के साथ। और अब जब मंथन किया, विष से तो मुक्ति मिल गई, जो कहा कि नीलकंठ बन गए वो, अब यहाँ पे मंथन किस लिए हो रहा है, अमृत आएगा, पर अमृत नहीं आ रहा है, पर आ रही अमूल्य चीजें हैं बेशक, जिसमें बताते हैं 14 रत्न निकले हैं, कि जिसमें कामधेनु, ऐरावत, उच्च श्रेवा घोड़ा, तो पारिजात का वृक्ष, तो कल्प वृक्ष, तो शंख, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है। तो थोड़े थोड़े अधीर तो हो रहे हैं कि जिसके लिए मंथन हो रहा है वो तो नहीं निकल रहा है, तो कब तक करते रहेंगे, क्योंकि आखिर तो थकेंगे ना भाई। तो खैर ठीक है, बोला हुआ है कि निकलेगा निकलेगा निकलेगा, करते जाते हैं करते जाते हैं। और एक समय आता है कि वो लक्ष्मी भी आती है पर अमृत तो अभी नहीं आया है। तो अमृत भी आता है धन्वंतरी, घड़ा लेके कलश लेके अमृत का। अब बहुत लंबे समय से धैर्य बांधे हुए थे, अब असुर तो असुर ही होते हैं, उनके धैर्य का बांध टूटा, क्योंकि इसी के लिए हम लोग मंथन कर रहे थे। और जैसे ही धैर्य का बांध टूटा, असुरों के जो हेड थे वो उस कलश पर झपटे और ये लेके भागे। भागे तो भागे, असुर तो असुर होते हैं, मैं फिर फंस गए। पहले मैं कोई पी नहीं पा रहा है, पहले मैं। अब ये तो जो हेड है वो कर रहे हैं पहले मैं, और जो टीम है वो भी परेशान, कहते ऐसे कैसे आप पी लोगे, दोनों का मिलके कॉम्प्रोमाना, जो हमारा बना था शांति प्रस्ताव, दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए, आप ऐसे कैसे पी रहे हो। इतने में कहा, और बेचारे देवता वैसे के वैसे खड़े रह गए, क्योंकि उन्हें क्या कहा गया था, आपको धैर्यता रखनी है, आएगा आएगा आएगा, बोला ना श्रीमत पे चलना है मनमत पे नहीं। तो वो श्रीमत पर चल रहे हैं, धैर्य रखे हुए, धैर्य की छीना झपटी करके नहीं लेना है। पर जब तक वो छीना झपटी करे भी नहीं, तो वो तो लेके ही चले गए बेचारे, ले गए बेचारे स्थिति में खड़े हो गए, और याद किया विष्णु जी को, ये क्या हुआ हमारे साथ, हमारे धैर्य का फल यही है क्या। तब कहा कि विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया, और मोहिनी अवतार के रूप में उनके सामने दैत्य जो आपस में लड़ रहे थे वहां जाके पहुंचे, और दैत्य उसके मोहिनी रूप पर इतने आकर्षित हुए कि झगड़ा वगड़ा सब भूल गए, और वो कलश अंतिम उनको ही दिया कि आप ही हमें पिलाओ। उसने कहा कि आप ऐसे कैसे पराई स्त्री पर आपने इतना जल्दी विश्वास कर लिया, ऐसे थोड़ी किसी पराई स्त्री पर इतना विश्वास कर लेना होता है, और मैं अगर आपके साथ धोखाधड़ी कर लूं तो। कहा नहीं नहीं नहीं, हमें आप पे पूरा विश्वास है, आप हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करोगे, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप चाहे जो भी करेंगे सब सही करेंगे। और उसने कहा देखो आपको मुझे बीच में टोकना नहीं है, मैं जो भी करूं। तो कहा दोनों उतने में, क्योंकि वो लोग भी तो कलश तो उनको भी चाहिए तो था, झगड़ा भले नहीं किया लेकिन आखिर पहुंचेंगे तो सही कि अमृत आखिर पहुंचा किधर है, देवता भी आ गए। और तब उस मोहिनी अवतार ने कहा दोनों अलग अलग पंक्ति बनाकर बैठ जाओ। और उन दैत्यों को उन्होंने कहा मोहिनी अवतार ने, आप है ना ये कलश के ऊपर का जो हिस्सा है ना, थोड़ा डायल्यूटेड है, तो डायल्यूटेड वाला मैं इनको पिला देती हूं, और फिर जो अच्छा घाड़ा घाड़ा है ना मैं आपको पिलाऊंगी। तो कहा ठीक है, और वो मोहिनी उनको पिलाते जा रही है। उस देवता दैत्यों के पंक्ति में बैठा एक असुर समझ गया था ये चाल है, हमारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, इसलिए वो जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, सूर्य और चंद्र के, क्योंकि देव मानते हैं ना सूर्य देव चंद्र उसकी। और जैसे ही सूर्य और चंद्र मोहिनी ने उसको पिलाया, सूर्य चंद्र ने कह दिया ये तो असुर है। और असुर ने पी तो लिया, लेकिन फिर सुदर्शन चक्र चला के उसका सिर धड़ से अलग कर दिया कि अमर तो रहेगा पिया है, लेकिन सिर और धड़ एक नहीं रहेंगे। और इस प्रकार से देवताओं को कंप्लीटली अमर बना दिया, अमृत पिला दिया। कहने का तात्पर्य धीरज का फल मिला जरूर। अब आते हैं विचार सागर मंथन पर, क्योंकि हम भी जब एकांत में बैठते हैं ना, जैसे हमने कहा था आपको ये आपका एकांत का समय होगा, आपको कोई कमेंट्री कराने नहीं आएगा, तो पहले ही मन कहता बाप रे एक घंटा क्या करेंगे बैठ के, क्योंकि और वो भी कमेंट्री नहीं होगी तो हमारा मन तो कुछ 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 सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, है ना। तो हमें पता होता है कि हमारे साथ तो ये होता रहता है, और इसलिए हम भी पहले राजी नहीं होते इस बात के लिए। ऐसे चुपचाप एक घंटा बैठ के योग, वो तो हम घर में भी कर सकते थे ना, मधुबन में क्यों आए उसके लिए फिर हम, है ना। कभी कभी मन कुछ कुछ बोल उठता है। तो ये जो सागर मंथन है वास्तव में विचार सागर मंथन है। उस सागर में भी क्या कहा गया, क्षीर सागर कहा गया है, साधारण सागर नहीं। अभी कोई ऐसा सागर देखा है जिसमें दूध भरा हो? घर में ही जब दूध आता है तो ध्यान दे के कहना पड़ता है, अरे बहू दूध गर्म किया कि नहीं, नहीं तो फट जाएगा। तो सागर में दूध पड़ा रहेगा, फटेगा नहीं क्या? ऐसा कोई सागर होगा क्या जहां पे दूध पड़ा होगा? तो कौन सा क्षीर सागर होगा? है तो ये चित्त रूपी सागर। और चित्त जब हम ऊपर से आते हैं, पूनम की जान की तरह निर्मल होता है। जिस कोई भक्ति मार्ग में कहा गीत गाया, तूने जग में भेजा देखकर निर्मल काया, आके जग में मैंने इसमें दाग लगाया। पहले तो वो चित्त एकदम दूध के मुआफिक, चंद्रमा के मुआफिक श्वेत धवल होता है, और चित्त में वृत्तियां उठती रहती है। चित्त में वृत्तियां उठती रहती ना, मन में विचार। वृत्ति और विचार में अंतर क्या है? वृत्ति और विचार में क्या अंतर होता है? जो एक लहर और भंवर में अंतर होता है। सागर में लहर उठती है, उसका अलग स्वरूप होता है, और जो भंवर उठता है उसका अलग स्वरूप होता है। लहरें तो वो दूर से आएगी और आगे 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 बढ़ती जाएंगी, लेकिन भंवर तो एक केंद्र बिंदु पर गोल 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 घूमता ही रहेगा। कई बार होता है हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, अब वही बात गोल 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 घूम घूम के, कुछ भी कर रहे हैं, जब करने लगे उसके प्रति थोड़े थॉट चले और फिर तो आदत के अनुसार काम करना है, और इधर ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, होता है नहीं होता है ऐसे? तो चित्त में जब हम वहां थे सत्युग में, दैवी वृत्तियां थी, लेकिन कलयुग के एंड तक आते आते ये दोनों वृत्तियां, कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो, इनकी ही फाइटिंग चल रही है द्वापर से। धीरे धीरे स्टार्ट हुई और धीरे धीरे देखा गया कि आसुरी प्रवृत्तियां बल पकड़ते जा रही है और दैवी प्रवृत्तियां क्षीण होती जा रही, कमजोर होती जा रही, और कलयुग के एंड में तो पूरा ही आसुरी प्रवृत्तियों ने दैवी प्रवृत्तियों पर अपना शासन, अपना राज्य, अपना एकाधिकार जमा लिया है। और ऐसे में हम परेशान बाबा के पास आके पहुंचते हैं, है ना। और बाबा हमें कहता है इसके लिए मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन में क्या करना होता है? मन बुद्धि मेरे पे लगाना होता है। और जब मन बुद्धि लगाने जाते हैं तो अभी इधर ही, उधर लगने से पहले तो इधर दुनिया में ही लगा पड़ा होता है। मेडिटेशन करने बैठते तो होता क्या है भाई? बैठे थे मेडिटेशन करने, जिसकी पहली स्टेप थी आत्मचिंतन करना है, दूसरी स्टेप है परमात्म चिंतन। आत्मा पे ही नहीं टिक रहे तो परमात्मा पे क्या टिकेंगे, है ना। इन दोनों का क्या हो रहा है? तब कहा कि मेडिटेशन में फिर भारी पड़ता है एकांत में बैठना, तब कितनी कमेंट्री चला दो ना, गीत बजा दो ना, लेकिन कब तक? अंदर अगर परिवर्तन लाना है, मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप के ऊपर। रेडीमेड से काम नहीं चलेगा। रेडीमेड तो सिर्फ इसलिए होता है कि आपको बात समझ में आए कि कैसे क्या करना होता है, लेकिन करना तो फिर अपना ही है। मंथन करना माना ही पुरुषार्थ करना। और कहा कि उनके पास शांति प्रस्ताव लेके जाओ, अर्थात बहस नहीं करो, विचार विमर्श करो। अंतर है बहस में और विचार विमर्श में। बहस में मैं भी गर्म होंगी, आप भी गर्म होंगे। मैं रस्सी अपने तरफ खींचूंगी, आप रस्सी अपने तरफ खींचेंगे। विचार विमर्श में समझने की कोशिश करेंगे। तो वही तो बैठ के करना है, एक घंटा एकांत में बैठ के। तो शांति प्रस्ताव देते थोड़ी लेके गए थे, देवता ही तो लेके गए थे। ज्यादा परेशान कौन है? दैवी प्रवृत्तियां ना, हम अपने देवत्व को स्थापित नहीं कर पा रहे ना, तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी? हमको ही तो करनी पड़ेगी ना। तो हमको भी क्या करना है, जब बैठते हैं ना एकांत में, तो मेडिटेशन करना है। माना पहला लक्ष्य आत्मचिंतन करना। अब आत्मा तक पहुंच ही नहीं पा रही हूं ना, क्योंकि ये वृत्तियां सामने आ रही है। तो कहा मंथन करना माना ही एक खींचेगा और एक ढील देगा। विचार विमर्श का अर्थ ये है, समझ में आ रही बात? एक खींचेगा तो दूसरा ढील देगा। रस्सा कशी में क्या होता है? रस्सा खींच रहे, दोनों ही खींचे जा रहे, और कई बार उसमें रस्सी टूटने के भी चांस होंगे। लेकिन विचार विमर्श माना कि एक खींचेगा तो दूसरा ढील देगा। जिसको ही कहते हैं, अगर वो गुस्से में है तो तुम तो चुप हो जाओ। और जैसे कहते हैं ना, पति पत्नी घर में होते हैं तो पति गुस्सा कर रहा है तो पत्नी का काम है शांत हो जाए, और अगर पत्नी गुस्सा कर रही है तो ये तो पति पत्नी का एग्जाम्पल दिया। लेकिन जीवन में हर दो के बीच में कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट के कारण ऐसी ही तकरारें होती रहती है। सिर्फ पति पत्नी में ही थोड़ी होती है। तो वही जो तकरारें हुई रहती है ना, फिर जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, वही तो सामने आता है। सिर्फ मेडिटेशन में क्या, जो बताया ना, सारा दिन भी जो कारोबार करना है तो कारोबार से रिलेटेड तो थोड़ा ही विचार चलाना होता है, बाकी तो आदत के अनुसार चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोटी बनानी है तो थोड़ा दिमाग लगाऊंगी, आज कितने जन की रोटी बनानी है, कितनी बनानी है। लेकिन एक बार वो हो गया तो आटा तो आदत के अनुसार गूंथा जाएगा। और इधर जो घटनाएं घटी है जीवन में, वो चलती रहेगी। तो जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे, वही होता है। तो वहां पे भी हमें अपने आप से जिद नहीं करना है, हट ये ख्याल क्यों आ रहे हैं, नहीं, उसको वॉच करना आरंभ कर दो। फाइटिंग नहीं, नहीं नहीं, ये वाला विचार नहीं आना चाहिए ना, मैं तो मेडिटेशन करने बैठी हूं ना, नहीं आ रहा है, आने दो, वॉच करो उसको। ये है हम उसके साथ हाथ मिला रहे हैं। कहा ना, एक खींच रहा है तो दूसरा ढील दे दे। तो मैं ढील दे के बैठ जाऊं, ठीक है, आने दो, मानस पटल पर जिस जो आ रहा है उसको आने दो। तो कहा ना, सागर हो गया हमारा चित्त, मंद्राचल पर्वत हुआ हमारा मन। मन को मथना, मन में ही तो आ रहा है ना बार बार, थॉट्स तो यही आ रहे हैं ना। लेकिन जब करते हैं, अंदर जाते भी है तो एकाग्रता की कमी, तो लुढ़क जाते हैं हम भी। लुढ़कते हैं, नहीं लुढ़कते हैं। तो लुढ़कने का उपाय क्या है कि भले आप बैठे हो एकांत में, भले अभी एक
वो बातें आ रही हैं, लेकिन कहा कि विष्णु आ गया, लुढ़कने शुरू हो गए थे ना, तो विष्णु आया कुर्म अवतार के रूप में, अर्थात भगवान ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान की एप्लीकेशन तो शुरू करूं कि सिर्फ ऐसे ही बैठ जाऊं? कहा गया एकांत में बैठो, हमें कहा आप अपने आप करो। अरे अपने आप करो तो ज्ञान को अप्लाई भी तो करो ना। तो ज्ञान ने क्या कहा हमें? सबसे पहली शक्ति हम क्या सिखाते हैं जिज्ञासुओं को भी? पावर टू विथड्रॉ। क्योंकि अभी तक मालूम ही नहीं था कि बाह्यमुखी से अंतर्मुखी कैसे होना होता है, क्योंकि पता ही नहीं था अंदर एक आत्मा और एक शरीर, ये दो चीजें हैं। तो सारा इधर ही था, सारा बाह्यमुखी थे। लेकिन ज्ञान में आए तो पता चला अंदर एक आत्मा है, वो ही मैं हूं, और वहां ध्यान केंद्रित करना होता है और उसके लिए बाह्य जगत से विथड्रॉ करना होता है। इसकी कमेंट्री की पहली लाइन क्या होती है? सर्व तरफ से ध्यान हटाकर मस्तक के बीचों बीच केंद्रित करे और वहां देखे एक ज्योति चमक रही है। विथड्रॉ करो, विथड्रॉ करो अभ्यास, वो अवेयरनेस तो लाओ कि मैंने अभी तक विथड्रॉ ही नहीं किया है, मैं उसके ही प्रवाह में बह रही हूं जो बातें मेरे अंदर चल रही है। ये है अवेयरनेस क्रिएट करना, बी इन प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, लिव इन प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, वो ये है कि वो जो मन का प्रवाह चल रहा है उसमें बह नहीं जाऊं मैं, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करूं। और उस अवेयरनेस में जब मैं वॉच करना आरंभ करती हूं तो धीरे धीरे वो बैठती हैं बातें, अवेयरनेस आती है, वो आत्म ज्योति की चमक भी दिखती है। तो विष्णु माना क्या? आत्म ज्ञान, जो बाबा ने आत्म ज्ञान प्रदान किया, अर्थात ही जिसको कहेंगे, बाबा कहते ना मैं आते ही हर बच्चे को दिव्य ज्ञान देता हूं, दिव्य बुद्धि देता हूं। तो कहा कछुआ आधार बना, तो बुद्धि के धरातल पर ये मन रूपी मंदराचल को मथना है। मंदराचल, मन प्लस अंदर प्लस अचल, मंदराचल। अंदर में जो मन है उसको अचल बनाना है, क्योंकि मन नाच रहा है इधर उधर, जंपिंग मंकी माइंड, कभी इधर जंप कर रहा है कभी उधर जंप कर रहा है, कभी इधर मथानी हो रही थी कभी मथानी उधर हो रही थी, तो चर्निंग होना, मथना डिफिकल्ट हो रहा था। मंदराचल पर्वत अपने आप में हैवी था, पहले वो चैलेंज आया था, तो भगवान ने कहा पॉजिटिव सोचो। पहले क्या सिखाते हम? पॉजिटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का ना मित्रता कर लो, क्योंकि जितना मित्रता करोगे तो उनके प्रति जो निगेटिव चल रहा है वो कम से कम चलना बंद हो जाएगा। तो जो मंदराचल पर्वत हेवी लग रहा था उसकी हेवीनेस कम हो जाएगी, ऊपर से बुद्धि का धरातल मिल गया उसको, तो वहां पे स्टेबलाइज हो गया, तो स्थिरता मिली, एकाग्रता मिली और मथनी चल रही है। तो जब वो होगा ना अवेयरनेस के साथ, तो जो हमारे जीवन में घटना घटी होगी, तो पहले बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार से देख रहे थे ना, तो उस घटना फिर से जो हुई यहां थी अब यहां हो रही थी, विचार सागर अभी इधर चल रहा है तो यहां घटना घट रही थी, उसने मेरे को पहले ऐसे बोला, अगर वो ऐसे नहीं बोलता तो मैं ऐसे क्यों बोलती, फिर उसने ऐसे बोला, फिर उसने ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे किया, वही सारा सामने आता है, जो बहस की हुई होती है वही आता है, जो कमेंट किए होते हमने, जो हमने गुस्सा किया होता है वही सब आता है वहां पे, उसको ही तो बैठ के मथना है। और मथना माना बुद्धि के धरातल, अभी मैं डिवाइन
इंटेलेक्ट को यूज करूं जो बाबा ने ज्ञान दिया।
अच्छा तो मैं क्यों बॉडी कॉन्शियसनेस में थी उस समय, मेरी गलती नहीं थी। बाबा कहते ना, बच्चे कहते बाबा उसने गुस्सा किया तो फिर मैंने गुस्सा किया, ऐसे थोड़ी मैंने किया।
अच्छा उसने गुस्सा किया, उसने गलत काम किया और तुमने गुस्से पर गुस्सा किया तो तुमने बहुत अच्छा काम किया।
बोलते हैं ना बाबा, तुम कहाँ गए, तुम अपने आप को भूल गए कि मैं आत्मा हूं।
वो तो भूला हुआ था इसलिए उसने ऐसे किया, पर तुम भी भूल गए, मतलब तुम उसके प्रभाव में आ गए, मतलब परिस्थिति से स्वस्थिति विचलित हो गई आपकी।
ये है कि बुद्धि रूपी धरातल पर मंदराचल पर्वत, पहले तो मित्रता भी कर ली उनके प्रति अच्छे भाव, तो वेट उसका अपने आप कम होने लगा, हल्कापन भी आया। फिर इस सीन को मैंने वॉच किया अवेयरनेस के साथ, जब अवेयरनेस के साथ वॉच किया वो सामने आई, और फिर मैंने अपनी इंटेलेक्ट को यूज किया जो भगवान ने दी है, लेकिन आत्मा होने के नाते मुझे ऐसे करना चाहिए था। उसने तो गुस्सा किया, मुझे क्या रेडिएट करना चाहिए था, मुझे तो प्यार से हैंडल करना था ना, तो गलती तो मैंने भी की ना, गलती तो मैंने भी की ना। ऐसे कह कह के उस जो अंदर में बहस चल रही थी उसके साथ कोऑपरेशन करेंगे, तो फिर कहा कि जो हलाहल निकलता है तो हलाहल में यही आता है, अच्छा मैंने इतना गंदा गंदा बोल दिया, मुझे जो बोलना नहीं चाहा था, अभी तो भारी पड़ रहा है ना, अभी तो रियलाइज हो रहा है ना कि मैंने तो गलत किया, पहले से ही इतने कर्म बंधन है, पहले से ही इतने कार्मिक अकाउंट है, उस कार्मिक अकाउंट को हल्का करने के बजाय मैंने क्या कर दिया, और हैवी कर दिया। ये तो कार्मिक अकाउंट के अनुसार जीवन में बातें आती है ना, तो जब मैं बुद्धि जो बाबा ने डिवाइन बुद्धि दी उसको यूज करती हूँ तो पता चलता है कि अरे ये तो मैंने गलत किया, तो ये लगता है ना विष जैसा। तब कहा कि नहीं बाबा अभी आप ले लो, बाबा जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती, अज्ञानता में हो गया, अब आप ये रखो और मुझे आप अपनी शक्ति से भरो, ताकि अब मैं शुद्धता के साथ आत्म चिंतन के साथ आपके साथ कनेक्ट हो जाऊं। होता है ऐसा, नहीं होता है तो ये करना पड़ेगा, सिर्फ कमेंट्री के भरोसे पे नहीं चल सकते हम, वो भी करो मना नहीं है, लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे ना जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला है। इसीलिए मधुबन में एक प्रैक्टिस दी हमने आपको कि एक घंटा आधा घंटा उसमें लगाओ आप। तो फिर क्या हुआ कि फिर कहा कि जब हमारा आत्मचिंतन में मन लगा तो कहा कि विष तो पी लिया, फिर अमृत तो अभी भी आया नहीं लेकिन दूसरी दूसरी चीजें आई, तो हमारे जीवन में भी हमारे मन की क्रिएटिविटी तो बढ़ जाती है ना, कम से कम हमारी शुभ भावनाएं शुभ कामनाओं का परसेंटेज बढ़ जाता है, हमारे टैलेंट बढ़ जाती है, होता है नहीं होता है, मन की शीतलता, इतनी तो प्राप्तियां हो रही ना, भले अभी अमृत अभी नहीं आया है लेकिन बीच में इतनी प्राप्तियां तो होने लगती है। तो कई बार हम इन्हीं प्राप्तियों को सोच लेते हैं, दिस इज माय डेस्टिनेशन, और उसी में खुश रह जाते हैं, बट दिस इज नॉट अवर डेस्टिनेशन। समझ में आ रही है ना बात, डेस्टिनेशन क्या है, 100% सोल कॉन्शियसनेस। जब 100% सोल कॉन्शियसनेस होगी उस दिन हम परफेक्ट होंगे, उस दिन हम कंप्लीट होंगे, हम ब्रह्मा बाप समान संपन्न होंगे, संपूर्ण होंगे, फरिश्ता होंगे। अभी तो क्या है, कभी सोल कॉन्शियसनेस कभी बॉडी कॉन्शियसनेस, कभी सोल कॉन्शियसनेस कभी बॉडी कॉन्शियसनेस। तो इसलिए ये अचीवमेंट जो मिलती है, तो कई बार कई भाई मैंने कह सकते हैं नहीं बहन जी हमारा मेडिटेशन का क्वालिटी इतना लो नहीं है जितना आप सोच रहे हो, हमको बहुत कूलनेस मिलती है, हमारी क्रिएटिविटी बड़ी है, लेकिन अगेन इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन ना, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो आगे बढ़ने के लिए फिर हमें कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। वो स्थिति जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो होता है ना कि चलो मेरी स्थिति डावाडोल 10 मिनट थी, अगले 10 मिनट अच्छी बनी, लेकिन अगले 10 मिनट फिर, लेकिन मैं 100% सोल कॉन्शियस तो नहीं हो पाई ना, तो इसलिए हमें मंथन जारी रखना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, और उस पुरुषार्थ का नतीजा वो अमृत सामने आएगा, मतलब हमारी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। तब कहा कि देवता वृत्ति फिर से, सॉरी दैत्य वृत्ति वो तो अधीर्य होती है, तो अभी भी 100% सोल कॉन्शियस नहीं है, मतलब अभी भी आसुरी वृत्तियां बैठी हुई तो है। जब तक मंथन चल रहा था धैर्य रख के बैठे थे कि मन आएगा आएगा, लेकिन जिस घड़ी आएगा उसी घड़ी हमारी वो बॉडी कॉन्शियसनेस, हमारी आसुरी वृत्ति फिर क्या करेगी, वो अधीर्यता शो करेगी। इसीलिए कई बार नहीं होता है, अरे अभी तो इतने अच्छे से क्लास में बैठे थे, बाहर आते ही क्या हो गया, हाँ होता है नहीं होता है, धैर्य खो दिया, धैर्य क्लास के अंदर तक था, जैसे ही क्लास पूरी हुई धैर्य गया हमारा। लोग कई बार कहते हैं बहन जी ब्रह्मा कुमारियों का क्लास आदि तो अच्छा लगता है, लेकिन जब क्लास से छूट के बस स्टॉप पे आते हैं ना बस पकड़ने, वहां धैर्य का एक भी अंश नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं तो अधैर्य हो गए, छीना झपटी करना शुरू कर दिया, लेके चले गए। और धैर्य जिसे कहा देवताओं को धैर्य रखना है, तो हमारी दैवी प्रवृत्ति को फिर भी अपने आप को संभाले रखना है। आसुरी प्रवृत्ति उठेगी जरूर, लेकिन मुझे अपने आप को संभालना है। किस आधार से, मैंने उस पिता परमात्मा का आश्रय लिया है, उसको जीवन समर्पित किया है, मैं उसकी श्रीमत पर मुझे पूरा पूरा निश्चय है, और उसकी श्रीमत मुझे एक दिन वो हासिल जरूर कराएगी। मुझे सिर्फ क्या करना है, धैर्य रखना है। जब धैर्य रखेंगे तो हमारी जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनको कौन आके रोक देगा, मोहिनी अवतार आके रोक देगा, क्योंकि वो भी झगड़ तो रहे थे, परंतु मोहिनी अवतार में फिर उसको ही देखने में क्या हो गए, मगन हो गए, सम्मोहित हो गए ना। तो ये मोहक मोहिनी अवतार क्या है, अपने आप में मन की भ्रामकता, और मन की भ्रामकता में क्या होगा कि असुरी वृत्ति सोचेगी ये तो इसमें वो अमृत भी हाथ से मतलब भूल जाएंगे, और उस मोहकता में लगे रहेंगे, और उस मोहकता में लगे रहेंगे तो फिर वो मोहिनी अवतार क्या करेगा, हाँ मोहिनी अवतार अगेन विष्णु का ही है, डिवाइन इंटेलेक्ट, उनके लिए तो भ्रामकता क्रिएट करेगा आसुरी प्रवृत्ति के लिए, लेकिन दैवी प्रवृत्तियों के लिए मुझे इनका भला करना है, आखिर अमृत तो इनको देना है, इनको देऊंगा तो ये तो स्वर्ग को भी क्या बना के रख देंगे, और इसीलिए पहले अमृत किसको पिलाते गई, देवताओं को पिलाते गई वो मोहिनी, और सब पिला के जब कुछ हो गया, कहा बीच में एक राहु आ गया, तो हम भी देखते हैं कि हम कई बार सोचते हैं अभी तो मेरी बहुत अच्छी स्थिति बन गई है, कुछ दिनों के बाद कोई एक निकल के आएगा अंदर से, अभी भी पता चलेगा अभी हम बहुत दूर हैं। तो तब तक हमें मंथन करते रहना है, जितना निश्चय बुद्धि, जितनी आस्था, जितना विश्वास, जितनी श्रद्धा हम भगवान के शिव बाबा की श्रीमत पर रखेंगे, जितना हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हम अपने परफेक्ट स्वरूप को हासिल करके ही रहेंगे, तो धैर्य को पकड़ के रखना, बुद्धि में सदा डिवाइन ज्ञान को यूज करना, तो बाबा किसी भी तरीके से हमें मदद करेगा, और मदद करके हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज को 100% तक पहुंचाएगा, और हम फरिश्ते बनेंगे, कर्मातीत अवस्था प्राप्त होगी, ब्रह्मा बाप समान
संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ, हम हिंदी में कहते हैं अंतर्मन और बाह्य मन, इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल माइंड और इंटरनल माइंड, साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। समझ में आया? अंतर्मन चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड चित्त है। और दूसरे शब्दों में अगर और सरल करूं, सिक्का देखा है ना सभी ने, सिक्के के दो पहलू होते हैं कहते हम, एक होता है चित्त, एक होता है पट। क्या होता है चित्त पट? चित्त कौन सा होता है? जिस तरफ चित्र अंकित होता है, जिस तरफ चित्र अंकित होता है उसको चित्त कहते हैं। तो हम भी इंद्रियों के माध्यम से मन डेटा ग्रहण करता है पहले, और मन में वो ज्यादा समय, जैसे कहा ना बर्तन की ऊपरी सतह में कुछ आपने डाला, धीरे 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 कहाँ जाएगा? तो अंदर जाके चित्त में, जैसे कि कंप्यूटर में हमने कुछ इसमें स्क्रीन पर टाइपिंग के माध्यम से कुछ टाइप कर दिया, तो अब ये स्क्रीन पर है, लेकिन सेव बटन दबाएंगे तो डिस्क पे चला जाएगा। सो चित्त इज अ डिस्क जिसमें हर प्रकार की चीजें हैं, जो कुछ भी आज दिन तक किया है। हम जो कहते हैं ना आत्मा की तीन फैकल्टी से, मन बुद्धि संस्कार, कि मन सोचता है, बुद्धि डिसाइड करती है, इंद्रियों से कर्म करते हैं, और हर कर्म की छाप आत्मा पर पड़ती है। तो कहाँ पड़ती है? डिस्क पे सेव होगा ना सब कुछ, चित्त पर सेव होगा। और तभी तो कहा कि इसीलिए वो सागर है, इसीलिए वो सागर और जितनी सारी छापे पड़ी हुई है वो ऊपर उठ उठ के आ रही है। तो भगवान ने हमें कहा कि तुम इनके साथ मित्रता कर लो, किस आधार से? कि तुम्हारा वैभव, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी श्री, तुम्हारी लक्ष्मी नष्ट नहीं हुई है, सिर्फ नीचे चली गई है। तो तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी श्री, तुम्हारी लक्ष्मी, इट इज नथिंग बट यूअर डिविनिटी, यूअर प्योरिटी, यूअर सात्विकता। तभी तो कहा दो युग में तुम सतोगुणी रहोगे, पहले सतो प्रधान फिर सतो, पर हो तो सतो ही ना, फिर रजो में आएंगे, मींस मटेरियलिस्टिक इंटेलेक्ट। क्योंकि अब यहां से जो ग्रहण किया जा रहा है इंद्रियों के माध्यम से, मन पहुंचा रहा है बुद्धि के पास, पर बुद्धि का कनेक्शन आत्मा से टूटा है, सोल कॉन्शियसनेस जीरो हो गई, तो डिवाइन ज्ञान डिस्कनेक्ट। अभी मटेरियलिस्टिक नॉलेज से बुद्धि भरती जा रही है और मन अपनी मनमानी उससे कराते जा रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं बुद्धिमानी से काम लो, मनमानी से नहीं करो। तो बुद्धिमानी माना डिवाइन इंटेलेक्ट, विवेक से जुड़े रहो और वो जो आपको गाइड कर रहा है वैसे करो। लेकिन अगर हम आत्मचिंतन में ही नहीं, आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं है, तो विवेक से तो कट है ना हम, तो मन से जो बाहर की दुनिया का डेटा आ रहा है उससे ही। तो मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस कई बार हमारी इतनी कार्य करती है कि बाबा के ज्ञान में चलते चलते भी कई बार सोल कॉन्शियसनेस अगर जीरो होती है तो हम कई बार क्या करते, अरे ऐसे समय में एडजस्ट कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए ना, क्या फर्क पड़ता है, काहे के इतने नियम पक्के पकड़ के बैठे हो, बोलते हैं कई बार हम लोग, आ जाते हैं ना उस झांसे में करते हाँ तो ये है ना। तो इसीलिए जितना कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे, माना अभी सोल कॉन्शियस स्टेज अभी उसका परसेंटेज बढ़ा ही नहीं है ना, इट विल टेक टाइम। और इसीलिए जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो ये सारी बातें आएगी, लेकिन जितना जितना सोल कॉन्शियस का परसेंटेज बढ़ते जाएगा, डेफिनेटली मेडिटेशन में बैठेंगे अब इतनी मेहनत नहीं लगेगी जितनी पहले लगती थी। हाँ
जी जी मैं वही तो इसीलिए तो पहले कहा ना कि चूहे और सांप जैसी रिश्तेदारी थोड़ी करनी पड़ेगी इसीलिए पहले वो बता दिया हमने थोड़ा सा तो हमको भी चालाकी चालाकी का इन द सेंस युक्ति और इट मींस विन विन हम भी तो विन करें ना हम तो विन करें ऐसे थोड़ी कि हम अध्यात्म में आगे और हमारे पर लोग अटैक करते रहे अध्यात्म की ये मीनिंग थोड़ी है कि बॉडी कॉन्शियस लोग हमारे ऊपर हावी हो जाए तो हमें नहीं युक्ति है जिसको बोलते हैं युक्ति माना सही करो चाणक्य बुद्धि माने एक एक होता है चीटिंग एक होता है धोखाधड़ी वो नहीं हमने अपनी सेफ्टी का कदम उठाया है अपनी सेफ्टी का कदम वही 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 तो यही तो हमें ज्ञान जो मिला है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन में जब बातें आती है चलो मैंने गुस्से पे गुस्सा कर दिया लेकिन फिर मुझे बैठना है अपने साथ ज्ञान में इतने दिन से सुन रही हूं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने क्या किया वो अपने आप से बात यही तो कहा था पहले दिन सुना हुआ ज्ञान ही सुनने वाली हूं नया कुछ नहीं मिलने वाला है लेकिन सुनने के बाद एकांत में बैठना चेकिंग करना और ऐसी जब तक चेकिंग नहीं करेंगे चेंज नहीं आएगा जीवन में चेंज नहीं आएगा जीवन में रियलाइजेशन करनी पड़ती है अनलेस देयर इज रियलाइजेशन देयर विल बी नो ट्रांसफॉर्मेशन तो संकल्प ही नहीं आएगा परिवर्तन का तो ये है विचार मंथन वो है सागर मंथन ये है विचार मंथन और वास्तव में यही उसका रूपक है वरना कोई देखा है दूध वाला कोई सागर फट जाएगा तो पनीर बना के खा लेंगे जी नहीं चित्त से ही तो उठेगी ना जैसे कहा भंवर कहाँ उठेगा नहीं तो भंवर जैसे कहा हमने एग्जाम्पल दिया ना लहर और भंवर में अंतर क्या है तो आप जल्दी से समझ गए तो भंवर कहाँ पे उठता है सागर में ही तो उठता है ना तो चित्त अपने आप में सागर ही तो है वर्षों के उसमें छापे पड़ी है ना तो उसमें से ही उठता आ रहा है ना उठता आ रहा है ना तो चित्त वृत्ति होगी ना इसीलिए देखो पतंजलि योग में भी क्या कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध माना ही समाधि जिसको बाबा ने बहुत सिंपल किया एक बाबा के अलावा और कुछ नहीं और उसकी मेथड दी तीन प्रकार के बिंदु जो कुछ हुआ ड्रामा के अनुसार हुआ फुल स्टॉप मैं आत्मा बिंदु मेरा पिता परमात्मा बिंदु और उसके प्रति दिल में प्यार के साथ उसके साथ कनेक्ट हो रही हूं तो जब मैं कनेक्ट हो रही हूं और एक बात ध्यान रखेंगे हम डूइंग में बहुत रहते हैं पहले दिन जब लेसन कराते हैं ना लोगों को तो बड़े अच्छे से बोलते हैं हम ह्यूमन डूइंग नहीं है हम ह्यूमन बीइंग है परंतु मेडिटेशन में हम बीइंग नहीं डूइंग ही रहते हैं मैं शांत स्वरूप हूं मैं प्रेम स्वरूप हूं तो डूइंग ही तो चल रहा है बीइंग बी बन जाओ ना शांत हो जाओ ना वो जो भगवान की वो स्थिति है जहां से सर्व दुनिया पर वो करुणा बरस रही है उस स्थिति में मैं सेट हो जाऊं ना मैं क्यों बोलूं कि मैं शांत स्वरूप हूं मैं आनंद स्वरूप हूं मैं ये नहीं कह रही हूं मत करो पर उस स्टेज तक पहुंचो ये माना पहली स्टेप से चढ़ने के लिए लेकिन अंतिम क्या है आप बी बी मतलब बीइंग हो जाओ बी पीसफुल न कि वो बी पीसफुल के लिए पीसफुल के थॉट करते ही रहो सो यू आर इन द डूइंग पोजीशन ओनली तो डूइंग नहीं बीइंग में बनना है तो जब वो बीइंग में आ जाएंगे ना तो परमात्मा ज्योति और मैं ज्योति भी हम भूल जाएंगे कि वो कौन और, क्योंकि दोनों सेम है। अपने उच्च स्वरूप में, अपने पवित्र स्वरूप में मैं सिर्फ उसी के जैसी हूं, बिल्कुल उसी के जैसी हूं। तो ऐसा लगेगा हम दोनों एक, जिसको ही कहा लव में लीन, और लोगों ने कह दिया लवलीन को कि उसने मर्ज हो जाती है, पर वो स्टेज है लवलीन की, कि जहां अनुभव में खोए हैं आप, कर नहीं रहे हो थॉट्स, लेकिन खोए पड़े। ओके, क्लियर एवरीथिंग? जी, बुद्धि में जो ज्ञान के आधार से स्थित, देखो बिलीफ सिस्टम जो होगी व्यक्ति उसके अनुसार चलता है ना, तो बिलीफ सिस्टम माना ज्ञान ही तो है। तो हमारे अंदर में पहले भरा था जैसे को तैसा, ये ज्ञान भरा था, इसलिए जैसे जिसने मेरे साथ किया उस समय मैंने उसके साथ वैसा कर डाला, तो एक ज्ञान को सेट किया हुआ है। लेकिन अभी कौन से ज्ञान को सेट किया है? डिवाइन इंटेलेक्ट है ना, दिव्य ज्ञान को सेट किया है। जैसे को तैसा नहीं देना है अभी, नहीं तो ये चलता ही रहेगा। आपके जीवन में अगर उसने कुछ किया है तो कोई कार्मिक अकाउंट होगा, अभी उसको सेटल करो। तो ये ज्ञान जितना बैठा रहेगा ना, उतनी स्थिरता बढ़ेगी। विचार तो मन को ही करना है, डिसीजन कौन लेगा? बुद्धि लेगी ना, तो बुद्धि डिसाइड करके बताएगी कि नहीं, मुझे जैसे को तैसा नहीं करना है, अगर मैं करूंगी तो ये मेरा कार्मिक अकाउंट बड़ा होता जा रहा है, ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाएगा। जो आज नहीं चुका पा रहा हूं तो ब्याज के ब्याज चढ़ने के बाद कब चुकाऊंगा मैं, कैसे चुकाऊंगा? सो वी हैव टू टॉक टू अवर सेल्स, और उसके लिए एक सिर्फ कॉमेंट्री आप सुनोगे तो अपने आप से कब करोगे बातचीत? तो अपने पर थोड़ा अपने साथ बैठो, ठीक है? ओम शांति।